इच्छा कल्पतरुभ्यश्च प्रकाशं तथैव च नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमस्तुदाशे हे कृष्णकरुणाशंभ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विशुभान्ति प्रणमामि हरे आदेवी कातुहरदहृदया सर्वा च जाचे निपत्तभूमितं तवतो भकारति अष्टादशात्मभुतस्य पुनश्च चित्ता गन्धर्विके पवगणे गणनम् अङ्गश्यामलिङ्छटाभिरभितो मन्दीकृतन्देवनं जट्टं जागृतलोकिशाम्बिदवतं कक्षं करन्निवासिनं सुदिलशब्दामाभिरामोदं राधाष्टं वेशितोद्वलभिरं ध्यायेन्द्रां भक्त्याभिन्नापराधरक्षयि कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायेष्माय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राव्रजन्तमन्तेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातव्या जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तवैवास्मि चैतन्य चैतामृत रामानंद संवाद अष्टम परिच्छेद चैतन्य यहाँ पर गोपी प्रेम को सब श्रेष्ठ बदला है। सब साक्ष्य यहाँ सब बदला है। जो गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही साक्ष्य। यहाँ तक तो ये समझो कि अभी जो शांत दास्य और सप्त बात्सल्य और मधुर का के लिए जो प्रमाण दिया शास्त्रों का वो सब विशेष करके सप्त बात्सल्य और मधुर बात सब नित्य सिद्धों का ही उदाहरण दिया। साधन इसमें नहीं है, सब राधात्मिक भक्तों के लिए ये सब बदला है। विशेषतः राधा प्रेम जी का तो ये साधन तो है नहीं, इसलिए तटस्थ पूर्वक विचार करें। वहां पर जो वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में जो वहां पर तारतम्य का कोई विचार नहीं, क्योंकि वहां पर तटस्थ कोई व्यक्ति नहीं। तो अच्छी तरह से समझने की चेष्टा है, वहां पर कोई तटस्थ व्यक्ति नहीं, वहां पर एक एक रस में एक एक
स्थित
एकदम स्थित। इसलिए वहां पर ये नहीं देखते इसके प्रेम से इनका प्रेम उन्नत है और उनके प्रेम से इनका प्रेम उन्नत है, जसोदा जी से राधा जी श्रेष्ठ हैं या सखाओं से जसोदा मैया श्रेष्ठ है, ये सब विचार ही नहीं है। ये सब नहीं, ये तो इस जगत में साधन के समय के लिए ऐसा सब कह रहे हैं, बतला रहे हैं, जिससे कि किसी का किसी एक विषय में लोभ हो। ये भी समझ रखो जिसके अंदर में जिस चीज की पोटेंसी है उसको उसी तरह का ही लोभ आएगा, है? वो किसी दूसरे रूप से नहीं आएगा।
अच्छा, पहले सरस्वती
ने बताया गया अच्छा लगता है,
नहीं पहले सरस्वती में बताया गया
यार राधा जी समझाएं कभी, यदि वैसी अपनी कृपा कर दें कि उस स्थिति में पहुंच जाए तब हो सकता, अन्यथा अभी जितना चित भाव प्रकट नहीं होगा लाख हम चेष्टा करें समझ में वो धुंधलापन बनेगा। इसलिए जहां तक ये लोग समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और हमारी पात्रता है वहीं तक हम लोग समझ, और भजन करके इन चीजों को भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से इसको उपलब्धि करने की चेष्टा।
और इस साधन के दृष्टि में साधारण रूप से लोग साधन भजन कर रहे हैं और बहुत से लोग देखा जाता है कि बड़े राधा जी के भक्तन होकर के और उपासना कर रहे हैं, मुख्य रस में कोई बासल रस में कोई शक्कर रस में तो कोई भूल जाते हैं खुद कहते रहते हैं, तो इसका ये मतलब
उसमें किसी किसी का ठीक है और बाकी सब ठीक है, किसी किसी का ठीक है। उन लोगों को जब निकट आते हैं बात
तो पता नहीं चलता है कि स्थायी भाव हो गया या नहीं स्थायी भाव।
हमें अधिकांश लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो मायावादी हैं,
हाँ
मायावादी पक्के हैं, उनको कोई रस से कोई तत्व से कोई संबंध, जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है और वो उस रस में प्रतिष्ठित हो जाएगा ये कभी नहीं असंभव। कुछ तत्व ज्ञान होना चाहिए अथवा जब भी वो प्रकट हो गया वो भाव लो तो ये अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा जैसे कोई एक भक्त हो किसी को लोग लोग होता है माने उनका तो रुचि के समय रुचि से पहले ये लोग वहीं से होता है। अब एक भक्त को रुचि से आरंभ किया भक्ति लोभ से राधा मुगा से, इसका मतलब है कि वो पहली श्रद्धा फिर साधन फिर श्रद्धा श्रद्धा गुरुकरण तत्व ज्ञान ये सब आकर के भजन करके अनर्थ निवृत्ति की जो अवस्था आएगी निष्ठा आ जाएगी और निष्ठा के बाद में जो रुचि होती यहाँ तक उसने पार कर लिया, उसके अंदर में जो कुछ देखेगा सब उसमें रुचि वाले में आ गया है ये समझ, ऐसा नहीं कि वो अंधा है उसको तत्व ज्ञान कोई कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लोग हुआ कि राधा के कृष्ण में वो मिल जाना चाहता है तो ये कहाँ हुआ, इसलिए ऐसा नहीं। इसलिए वो कभी भी अंधा नहीं, उसको तब तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा, वो बता ना ज्ञाने प्रयास उपास नमंत
जीवन
पेशाताम भौधी अवर्तम स्थाने सीता मनोभी प्रायशो अधित जी। इसका तात्पर्य सतान प्रसन्न मम विद्य संविदो भवंतरित करण रसायना तथा तद्योषनाथ आशु अपवर्णवस्मनी श्रद्धा
रति
भक्ति अनुपमित, यह अपने आप ये सब आएगा। तत्व ज्ञान लोभ होने लगा तो इसका मतलब है जैसे ये सब चीजें हो गई इसको पार करके तब वहां पर गया है तब वो रति हुई है और सब उसमें है। हनुमान जी बंदर हैं, बंदरों जैसा वो सेवा करते हैं, उनमें कोई भी तत्व ज्ञान इत्यादि कोई कुछ नहीं है, ऐसा होगा आखि उसमें समस्त तत्व ज्ञान भरा पड़ा है मुक्त तक होने तक जो कुछ है सब सब में, केवल बंदर नहीं है और अंधाधुन रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं, सब समर्थ हैं मुक्त हैं, वो कितने साधन किए होंगे या नित्य परिकर हों वो शंकर जी हैं, इसलिए उनमें सब कुछ एकदम है, नीचे के जितनी भी चीज है केवल बंदर ही नहीं है।
ওই যখন ভাব যখন প্রকাশিত হয় তখন কি হয় না রসের মধ্যে তাকে চমৎকারিত এবং বিস্ফারিত হয় তখন বোঝা যাবে তার ওই রসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।
এই দুটা মিলিত হয়ে তারপরে
এছাড়া যেমন ভাগের লক্ষণে দেখানো হয় শান্তির অবস্থা কালোত্তম বিরক্তি মানসন্নতা এসব লক্ষণ যা উদয় হতে গিয়ে দেখা যায়গা তব সমঝা যায়গা কি ভাব নেই তো ইয়ে ভাব নেই আই তো প্রতিবিম্ব ইয়া ভাব ভাষ ইয়া ভাব দৃষ্টি হ্যাঁ ইয়া ভাব প্রতিবিম্ব মানা যায় ऐसे रति में भी यहाँ पर कहा गया है पहले स्थाई भाव से ये रति
एक आदमी एक लड़की या एक लड़का कहता जी हमको राधा जी की दासी होना चाहिए और विवाह करने के लिए छटपट छटपट कर रहे हैं कब विवाह हो जाए कब विवाह अच्छा तो भाव हुआ कि नहीं और लोग हुआ कि नहीं ये सीधी सीधा सा प्रश्न
कभी उज्जवल ने उन्हें दिखाया छोटी सी बालिका है तो ये कभी कृष्ण को वात्सल्य भाव से देती है पुत्र व्यवम भाव से कभी कुछ कभी
कृष्ण के अतिरिक्त
अभी उनके
उनके अंदर में कोई भी किसी के प्रति भी कुछ नहीं आएगा सब कुछ हुआ और जब ये अभी मन इधर उड़ रहा विषय में क्रोध है काम है ये सब चीजें परिपूर्ण मात्रा में तो कहाँ ये सब हुआ इसलिए वो सब बेकार की वो आभास भी नहीं है वो दुष्ट चीज है वो संसारिक चीजों के समान उसको मान करके उसमें कुछ आनंद खोलता है भक्ति का निराला ही स्वभाव है इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कहा था ये भाई ये सब सिद्ध अवस्था की चीजें नित्य सिद्ध परिकरों की बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि कनिक से भी किसी को वो इसीलिए हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं राय रामानंद विशाखा और महाप्रभु जी कृष्ण उन दोनों में बातें हो रही हैं और उसकी बातें हम लोग यहाँ पर अनुशीलन कर रहे हैं यदि थोड़ा सा भी छींटा हम लोगों के ऊपर में पड़ जाए तो हम लोग का ठीक है इस बहुत उच्च छींटा अभी यही चीजें जो हम लोग पढ़ सुन रहे हैं अभी आज से हमने पहले बहुत बार पाँच सात दस वर्ष पहले इसको बात की उस समय में थोड़ा सा कुछ कुछ समझने की चेष्टा कर रहा अब इस बार हम लोग कर रहे हैं तो विशद रूप में व्याख्या भी कर रहे हैं
इस बार तो आप उज्जवल बने के और
ये समझाने के लिए ये सब किया इसके प्रसंग बने जो लोग समझें यदि इसके बाद में हम लोग फिर कभी करेंगे तो तुम लोग भी इसको इस रूप में न सुनकर के दूसरे रूप में सुनेंगे आज जो पहली बार सुनेंगे उनके वैसा समझ में नहीं आएगा साधारण रूप से समझ तो हम लोगों ने मई भक्ति भूता नाम अमृत आय करते इसका भी भक्त हमने गोपियों के लिए भगवान के प्रति जो भक्ति होती है ये कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से हमारे प्रति जो भक्ति है अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय बतलाया मुक्ति से किंतु ये मुक्ति वो निर्विशेष मुक्ति नहीं
स्वरूप में
स्वरूप में व्यवस्थिति वाली से बदला और जन्म मरण से ऊपर साधारण साधन भक्ति से ही क्लेश रग्नि है ये क्लेश रग्नि का होना ही इसलिए वैष्णव मात्र को ही दृष्टि से देखना चाहिए वैष्णव मात्र कौन वैष्णव देखने को होना चाहिए
तो वो लोग यहाँ अमृत से मुक्ति को
उनको हमारे प्रति स्नेह हो ये प्रेम साधारण भक्ति से ऐसा ही होगा जो क्लेश अग्नि हो जाएगी और सब सुविधा हो जाएगी तो ये संसार से विमुक्ति विशेष रूप से मुक्ति ये साधारण भक्ति का नामाभास का फल है नामाभास से कोई वैकुंठ में नहीं जा सकता अभी कोई प्रश्न कर रहे थे स्कूल वाले लोग ये लिखा है हरिनाम चिंतामणि में एक आदमी ने व्याख्या करके ये नामाभास से एकदम वैकुंठ मिल जाए ये गलत महाभारत से कभी भी वैकुंठ नहीं होगा उससे मुक्ति हो मुक्ति माने क्या जन्म मरण का ये जो भाग है यह सब स्तंभ है अगर जन्म में संसारिक दुख सुख मान अपमान इत्यादि इसमें जो जीव है हम लोग इस माया से
होने के बाद
ये शरीर में रहते हुए भी हो जाएगा स्वरूप सिद्धि नहीं है सब हो जाएगा। अजामिल का यही हुआ, उसने नवाभास किया अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया और इसका इतना फल है वो नहीं जानता था किंतु गुरु अपने गुरु जी से वो जान उनके गुरु कौन है उन्होंने इसके पहले कभी किसी से इस विषय में नहीं सुना। अच्छा उन्हीं के वचनों में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और उन बातों को सत्य समझा। क्यों? उनके सामर्थ्य को देखा, वाह इन्होंने हमारी मुक्ति करा दी, इन जमदूतों को भगा दिया और सचमुच में हमारी रक्षा कर दी, अब इनसे बढ़कर के कौन होगा। इसी प्रकार से गुरु में कुछ गुरुत्व आदमी देखता है तब उसकी श्रद्धा पकड़, नहीं तो वो तल तवायन वर्ष देखा तो उनको दृढ़ श्रद्धा हो गई, देखा कि हमारी मृत्यु से भी रक्षा कर दी और जम के दूतों को भगा दिया, बस उनके वचनों में दृढ़ विश्वास उनका हो गया, बस गुरुकरण हो गया, उनको अपना मान लिया, मान करके फिर जो बच गया तो वहां से हट गया और तब फिर भक्ति का अनुशीलन किया, नाम करते 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 नवाभास से फिर धीरे 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 शुद्ध होने से धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कम सब भावावस्था में पहुंची और उसके बाद में प्रेम होगा तभी वैकुंठ में जाएगा, बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, ये शुद्ध नाम के द्वारा, इसलिए वो शुद्ध नाम हुआ और तब इसके बाद में प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम के द्वारा तब फिर वैकुंठ।
यानी साधक को चाहे कितने बार ही जन्म लेना पड़े सिद्धि जब तक नम तब तक
आना होगा, वो नमाभास भी आना होगा, भले ही मुक्त है गया स्वरूप किंतु वस्तु सिद्धि उसकी नहीं, उसकी तो वस्तु सिद्धि का विचार है, जब बैकुंठ के दूत आए और बैठा करके विमान में और बैकुंठ में ले गए और उसको सारूप मुक्ति दी, चतुर्भुज होकर के गया उसमें सालों के भी उसका हो गया और प्रेम सेवा उत्तरा हुआ कि क्या हुआ इसका उल्लेख, प्रेम सेवा उत्तरा का होने के लिए कुछ और चाहिए, प्रेम सेवा उत्तरा नहीं हुआ वो क्यों उसके लक्षण से मालूम होता है, उन्होंने कोई रसिक वैष्णव का हनुमान इत्यादि का किसी का संग नहीं किया या नारद जी का, यदि नारद जी का संग हो गया होता तो हो सकता है। अच्छा इसलिए भगवान की जो भक्ति है यहाँ पर भक्ति माने साधन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अथवा यहाँ पर साधारण रूप में वैदिक भक्ति के लिए यहाँ पर वह भक्ति साधन वैदिक भक्ति उसके द्वारा ये अमृत द्वारा फिर उसका जन्म मरण नहीं होगा भक्ति के द्वारा, क्योंकि ओहो तुम लोगों की तो हमारे प्रति प्रेम है स्नेह ममता युक्त प्रगाढ़ प्रेम है, ये कैसा है भौतिक नाम मदापन हमारे से तुम्हारी प्राप्ति करा देगा मिलन करा देगा यह प्रेम, ये गोपियों को बड़ी प्रसन्नता है। किंतु कृष्ण वहां पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी कर दिया, कृष्ण ने उदाहरण दे दिया कि जैसे वायु सर्वत्र ये शरीर में आग भी सर्वत्र है किंतु मथन करने से तब वो प्रकटित होता, ऐसे मैं सबके अंदर में हूँ और ध्यान इत्यादि के द्वारा मुझे पाया जाता है, बस गोपियों को रोष हो गया तब उन्होंने आहुष्य ननिज नाम पदार बिंदन योगेश्वर विचिंत बागाध बोधई संसार कु पतितो तरणावलंबम गेहम दिशामपि मनस्विद्या। अब इनका ये बतला रहे हैं गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ है, प्रसंग बसता ये सब बतला है, इसमें स्नेह को लिया भगवान भगवत प्राप्ति के लिए स्नेह अत्यंत आवश्यक, ममत्व युक्त, अत्यंत अधिक ममत्व युक्त जो स्नेह है, जो भक्त पहले द्रवित हो जाएंगे और उनको देख करके कृष्ण भी द्रवित हो, बिना द्रवता के स्नेह वो मिलते नहीं। प्रेम से भी लुका छिपी करेंगे, लुका छिपी रहेगी, किंतु स्नेह जा हुआ चित्त द्रवित हो गया, रास में भी यही हुआ, गोपियों का चित्त द्रवित हो गया आगे और उनको देख करके कृष्ण द्रवित होकर के समय मान काम हो गया। जब पहले हम लोग आलोचना कर रहे हैं इसके बाद में बतला रहे हैं आप प्रसंग पर फिर अब आ रहे हैं। कृष्ण प्रतिज्ञा दीर्घ सर्व काले आज ये जैसे बजे कृष्ण तारे बजे कैसे, कृष्ण की एक प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा कैसी है, दृढ़, वो टलने वाली नहीं है, जो सर्व काले आज, सर्व काल माने केवल कलयुग के लिए ही नहीं, द्वापर युग के लिए ही नहीं, त्रेता युग और सत्य युग और इससे अतीत कालातीत भी, कालातीत भी उस सब समय के लिए हमारी एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। कृष्ण ऐसा करते हैं, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा वो कभी टल नहीं सकती। जे जैसे भज, जो जैसा कृष्ण को भजन करते हैं, कृष्ण तारे भजे कैसे, कृष्ण उसको उसी रूप में भजन, भजन माने यहां जैसे भक्त जिस भावना से उनका भजन कर रहा है, कृष्ण भी उसके उस भजन के भाव को पूरा कर, यह भजने का अर्थ ये भी होगा। कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियां घर का काम सब छोड़ करके बंसी की ध्वनि सुन करके आई, अब कृष्ण ने उनको कैसे भजन किया, जिस अभिलाषा से वो आई थी उस अभिलाषा को पूर्ण किया, इसका तात्पर्य हुआ ये जैसे भजे कृष्ण तारे भजे एक प्रेम अनुरूप ना पारे भवि के अतव ऋणी है वह भागवत, इसलिए कहा ये जथान माम प्रपद्यन्ते, आगे बताए ये जथान माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम, जो एक आना भजन करेगा एक आना ही उसका भजन करेगा, वो भी जो सोलह आने में से चार आना भजन करेगा तो वो चार आना, यदि कपटता तो वह कोई भजन करता है तो कृष्ण कपटियों के भी भूत हैं, कपट शिरोमणि है, कोई अर्थ के लिए करता है तो उनके सामने गणेश जैसा प्रकट होकर के उनको देखे, कोई विवाह इत्यादि चाहेगा तो उनके सामने में वो दुर्गा होकर के ये सब
जो जो जान जानते हैं श्रद्धा अर्चित
जो जो मैंने जैसा जैसा करता है ना, और उसी रूप में कृष्ण वैसे ही बन करके और वैसे ही लोगों में प्रेरणा करके देवताओं में और उनकी इच्छा को कभी स्वयं करते हैं कभी लोगों के माध्यम से कराते हैं। एक ही बात में मैंने या किसी प्रतिनिधि को भेज दिया तो वैसे कृष्ण अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी इच्छा को वो पूर्ण करा दे। यदि कोई पितरों की पूजा करता है तो वो क्या करते हैं, पितृलोक में उनको पहुंचा दे, देवता देवान पितृवता भूतान जानते बुद्ध ज्ञा मज्जादिनो अपि, हमारा जो उपासना जो देवताओं की उपासना करता है उनको देवलोक में पहुंचा करके देवताओं से मिला करके देवताओं के समान ऐश्वर्य इत्यादि दिलवा देते हैं। जो पितरियों की सेवा करता है भजन करता है उनको पितृ लोक में उनको बना, जो पतिव्रता है उनको पतिव्रताओं लोक में प्रेरित कर उनको वहां का भोग कराते हैं। किंतु हमारा जो भजन करेगा वो हमारे पास ही जाएगा, मत हमारा जो भजन करने वाला वो हमारे पास नहीं। किंतु और एक साथ ही साथ में बात कह दी, और जितने हैं वो सब आप ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्ती, आप सब लोग भ्रमण करते रहेंगे आप ब्रह्म भुवन आलोका ब्रह्मा तक इस श्लोक में उस श्लोक में आते जाते रहेंगे जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे। किंतु हमारा यदि जो उपासना करता हमारे लोक में चला गया उनका फिर कभी भी पसंद नहीं है। मांग पे तो तू कौनते पुनर्जन्म, और ये क्या है जो हमारे यहाँ जाकर के कभी नहीं लौट वहाँ जाकर के फिर लौटना नहीं होता और सब जगह से लौट आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण तो भाई किस रूप में किसी किस रूप में कभी जैसे तैसे सबको इच्छा को पूर्ण करा देते, जैसा जो भजन करेगा बस। यदि कोई कह दिया कि प्रभु मैं आप में मिल जाना चाहता हूँ, आप में विशेष निराकार, आप में कोई आकार नहीं, आप उसमें मैं मिल जाना, अच्छी बात है, उसको इंजेक्शन दे देते हैं जैसे आप तुम समझ लो जो तुम भाई
नहीं।
इसी का नाम है माने उसके चेतनता तो को कुछ समय उसमें हरण कर देते हैं, वो समझता है कुछ भी नहीं समझता, मैं हूं या नहीं, इसी को कहते हैं ब्रह्मशाही। भगवान हजार चेष्टा करें तो भी भक्त भक्त ये नहीं कहता, और संसार के जितने लोग हैं यही चाहते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों में भी तिलक माला हम लोगों की है, वैष्णव हैं, दीक्षा भी ले लिया खूब ठाक के साथ में, 2,000 रुपया दीक्षा में खर्च किया, बहुत लंबा हवन करवाया, लंबा यज्ञ पवित्र लिया, और पूछा जाए भाई भजन करते करते अंत में हम लोग भगवान में मिल जाएंगे तो हमारा इसीलिए तो भजन कर रहे हैं, समझे कोई तत्व ही ज्ञान नहीं। तो जो लोग हरिनाम तो करते हैं और वैष्णव का तिलक धारण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और हरि कथा नहीं सुनेंगे वैष्णव के मुख, उनकी यही दुर्गति है। हो सकता है कि वो मायावादी न बन जाए, कर्मी न बन जाए, ज्ञानी न बन जाए, इसलिए हरि कथा को सुन करके फिर शुद्ध नाम जो करेगा शुद्ध रूप में हरि कथा सुनेगा उसी को प्रेम होगा और वही वहां पर जाएगा, अन्यथा कोई नहीं जाएगा, बहुत दुर्लभ चीज है ये। इसलिए भगवान का ये नियम है, प्रतिज्ञा है, हमारा जैसा जो भजन करता है मेरे पास में राम कांटा न कि धर्म कांटा, राम कांटा भी कहते हैं धर्म कांटा, कि धर्म का राम कांटा भजन पक्का, तनिक भी इधर उधर नहीं होगा। जो जैसा भजन करेगा कपट से रह करके कर्म मिश्रा सकाम निष्काम भक्ति युक्त प्रेमा भक्ति युक्त ब्रज के भाव को लेकर के उसका सबका वजन वो कर लेते हैं और वजन के परिमाण ही में उसको वो चीज दे देते, किसी तारिणी नहीं रहते,
डंडी नहीं मारेंगे किसी
ने, वही तो कपटता है, दिखाते हैं मैं तुम्हारे पर बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी भारी कृपा की, और वहां पर डंडी मार दी उन्होंने, वंचित कर दिया उसको, ठग भी है पूरे, यदि तुम्हारा हृदय ठग है तो वो भी ठग गए, तो वही कहते हैं। किंतु एक जगह वो ठग जाते हैं बेचारे, अनुरूप फल नहीं दे पाते, वो बैकुंठ तक वजन करके सबको ठीक कर देते हैं, द्वारका तक में भी सबको ठीक करते हैं, सखा लोगों को भी उचित उनके प्रेम का जो उसके प्रतिदान है उसको भी सखा को भी, सखा अपने कंधे पर कृष्ण को ले जा रहा है तो कृष्ण क्या करें, तुम अब तुम थक गया तुम हमारे कंधे पर बैठ लो, वो जितना ले गया था उसे एक इतना एक हाथ और आगे पहुंचाए उसका ऋण शोधन, मैया का भी ऋण शोधन कर देंगे, किंतु एक जगह लाचार हो जाते हैं, कहाँ बस इसी जो अभी प्रेम को बतलाता, एक प्रेम अनुरूप ना पारे पजीते अतएव ऋणी है पहले भाव, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया न पारे हम निर्वत व्यसन, न पारे मैं कभी भी ऋण नहीं चुका सका और न सकता हूं, न सकूंगा, न चुकाया न चुका सकता हूं वर्तमान में भी और भविष्य में भी नहीं चुका सकता, तुम लोगों का इसलिए
सेवा करते हैं
तो उनके बाद वही करिए और बुद्धि को नाप लेते हैं कि कहाँ पर है, फिर बजावा थी
तो वहाँ पर था नहीं, बांस लगाया नीचे तक था ही नहीं मिली उस प्रेम का, गोपियों के प्रेम का था नहीं मिला। तो वो जब था मिलता था तो उतना बराबर कर देते, और उनका पलरा और ये भी है ना, तो वहाँ पर भागना सहने का कारण वहाँ पर टूट जाता है, इसलिए वजन ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए वो बराबर करके भी नहीं पाते। तो कहते हैं कि क्यों कहते, इसलिए कहें निर्मध्य संगम, तुम लोगों का हमारे प्रति जो मिलन है, तुमने हमें जो प्राप्त किया, तुम्हारा जो हमसे मिलन है, या तुम हमको जो प्रसन्न करने के लिए सेवा करती है, यह कैसा है? निर्वध्य, निर्वध्य किसको कहते हैं, जिसमें तनिक भी कोई स्पॉट न हो, कोई भी दाग नहीं, कोई भी कमी न हो, पूर्ण रूप से शुद्ध। जैसे एक सोना को एक बार आग में जला दिया गया तो हो सकता है कि उसमें कुछ निर्मलता में कमी हो, कोई स्पॉट रह गया, और उसको लखबान यदि हो किया गया हो, लखबान माने क्या, एक लाख बार उसे आग में तपाया, निकाला, फिर तपाया, फिर अब कोई भी संभावना नहीं। इस तरह से हमारा तुम्हारा जो प्रेम परस्पर का मिलन है, ऐसा निर्वर्त अर्थात परम विशुद्ध
है। लखवान माने एक लाख बार जलाए,
इसका मन है लखवान होता नहीं कह, इस प्रकार से हमारा तुम्हारा मिलन है। अच्छा मिलन मैंने यहाँ क्या, मिलन मैंने क्या, मिलन ने दोनों का मिलना है? नहीं, जैसे रास में मिलन हुआ, हमारे गोस्वामी ने उनका जो वर्णन किया, प्रेम चित्त से जब मिलते हैं, विलास युक्त उन दोनों का मिलना, ये मतलब है मिलन। ये मान लिया कि कृष्ण ने बंसी वादन किया, गोपियों ने घर के अपने पति से, ससुर से, सास से ये पूछ करके आई जो मैं कृष्ण के यहाँ जा रही हूँ, किसी से पूछा नहीं,
समय कहाँ,
चुपचाप चली आई, समय मिल रहता तो वो छिप करके आए। अच्छा जो छिप करके आया जाता है इसमें कोई ना कहीं दोष है, कोई आदमी कोई व्यक्ति काम करता है छिप करके, इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ जरूर दाल में काला है। तो ये सब जितनी की जितनी गोपियां आई छिप करके आई, तो कुछ गड़बड़ी है। अरे अपने पतियों को छोड़ना इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है, ये महापाप, ये सबसे बड़ा कलुष, यहाँ तक कि अस्वर्गम स्वर्ग से भी नीचे चुप करने वाला,
अजसस्करण अकीर्तिकरण,
ये सब चीजें। तो ये तो वो कह रहे हैं नहीं, ये मत समझो निर्वध्य कैसा है,
इसी प्रकार दाग
जिनके आंखों में दाग है, अंधे हैं, वो लोग ऐसा समझते, मुझसे बढ़कर के और पृथ्वी में किसी की आंख नहीं है, मैं भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जान, जितना ज्ञान का स्रोत है वो सब हमसे निकला है, धर्म भी हमारे से निकला है, इसलिए कहते हैं तुम्हारा जो हमारे प्रति जो मिलन है यह अत्यंत विशुद्ध है, इसमें कहीं भी कोई दाग नहीं, पूर्ण रूप से स्वच्छ है, स्वसाधिक उद्यम विबुधादिशा, इसमें मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों, हमारे गोस्वामी लोग बतलाते हैं कृष्ण हमसे प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद में कहा जैसे तुम कुछ क्या चाहते हो, किस लिए ये हमारी सेवा की, तो हम कहते हैं ये जान करके उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, ये तो अरिणी हो गए, माने किसी की इच्छा को पूर्ण कर देना ही पूर्ण होना होगा। गोपियों ने कृष्ण को प्रसन्न किया, कैसे प्रसन्न किया, लुक छिप करके आई, एक तरह से संसार वर्णाश्रम धर्म के लिए ये महत पाप करके उनके पास में आए। जितने बंधन थे सब बंधनों को तोड़ दिया। एक बड़ी भारी नदी थी, बड़ी भारी नदी, अथाह पानी वाली, अथाह किनार, इस मर्यादा के नदी को भी पार किया। गुरुजनों का जो वाक्य लंघन, ये बेड़ी हथकड़ी को भी उन्होंने एकदम तोड़ दिया। और कृष्ण से जाकर के मिली, कृष्ण ने पूछा, मैं क्या तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूं? मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो गोपियां ने कहा जी, आपकी कृपया सेवा हमको दी। अरे अपने लिए कुछ मांगो तो हम अपने लिए ही मांगते हैं कि आपकी हमको सेवा दी। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई वर नहीं मांग सकती है। तो फिर कृष्ण और ऋणी हो जाएंगे। यदि ये वर दे दिया तो और ऋणी बन गए। इस तरह से वो ऋणी रहेंगे। दूसरी बात, गोपियों ने यदि कहा, अच्छा आप यदि प्रसन्न हैं तो एक बात की, जैसे हम तन मन धन से और सब कुछ को छोड़ करके, विश्व को छोड़ करके, पति पुत्र और सब छोड़ करके, केवल मात्र एक निष्ठा से हम आपकी सेवा कर रही हैं, उसी तरह से आप भी एक निष्ठ होकर के हमारे प्रति प्रेम दर्शाएं, हमारी मनोकामना कृष्ण करेंगे। वहां तो करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों गोपियों ने यही एक बात कही, आप सबको छोड़ करके केवल हमारा प्रेम। ऐसा कहती नहीं है वो, जब भी कर दें कह दें, वो जानती हैं कि कृष्ण नहीं कह सकते, इसलिए वो कहती नहीं है। इसलिए कृष्ण बहुनिष्ठ हैं। उन गोपियों की तो बात क्या, इस जगत में जो साधक भक्त हैं, कोई भी साधक भक्त है, कृष्ण राश कर रहे हैं एकदम अविनिष्ठ होकर, अथवा उस राष्ट्र को भी छोड़ करके, सबको छोड़ करके राधा जी का केश संचालन कर रहे हैं श्रृंगार भट्ट में, अत्यंत निविष्ट होकर। उस समय जगत का कोई भक्त कोई भगवान से प्रार्थना करते हुए भजन कर रहा है तो उसकी प्रार्थना को कौन सुनेगा? कृष्ण स्वयं सुनेंगे या अपना प्रतिनिधि भेज देंगे? क्या करेंगे? वो प्रतिनिधि नहीं मानता है। वो जो सेवक जो भजन कर रहा है, साधक भजन सुने, तो क्या करेंगे? वो उनको ही सुनना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण बहुनिष्ठ हैं, कदापि एकनिष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए गोपियां जैसे सब कुछ छोड़ करके, देह की आसक्ति भी छोड़ दिया, अपने मम और मैं और मम सब कुछ छोड़ दिया और एकनिष्ठ कृष्ण में हो गए। ऐसे कृष्ण कदापि नहीं कर सकते। कृष्ण के बंसी वादन के समय में जैसे सब गोपियां दौड़ गई और सब गोपियां एक ही साथ में कृष्ण को पुकारे, तो वो क्या करेंगे? एक के पास में जाएंगे ना, सबके पास में जाएंगे? उनको सबके पास में जाएंगे। इसलिए बहुनिष्ठ हैं, इसलिए ऐसा वो भजन कर ही नहीं सकते। आ रहा है कुछ समझ में? इसलिए कहते हैं साधु, तुम्हारा यह कार्य है वो साधु है। किस लिए साधु है? पतियों का छोड़ना इत्यादि भी तुम्हारे लिए साधु है। क्यों? हमने यह कर ही रखा है सर्व धर्मानुप्रतिम, सब धर्म को छोड़ करके एकांत में हमारे समान, इसलिए यह अधर्म नहीं हुआ। मैं ही एकमात्र जगत का परम पति हूं, परम पिता हूं, परम माता हूं, सब कुछ मैं ही हूं। विशेष करके मैं ही परम पति, मैंने पालन पोषण करने वाला, त्राण करने वाला मैं ही हूं। उससे अतिरिक्त और कोई नहीं, अंतिम सर्वोच्च स्थिति। इसलिए जगत का कोई भी व्यक्ति भगवान का शरणागत होता है तो उसको पाप नहीं लगता। सभी मनुष्य जितने भी जीव हैं वो चार ऋणी से आबद्ध हैं, पांच ऋण। वो ऋण क्या है? वो क्या है
देवर्षि
देवर्षि भूताप्त नृणां नयन पितृणां नयन ऋणी च राजन जा सर्वत्मना शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहत्य कर्तुं नयन देवर्षि देव ऋण ऋषि ऋण भूतरी आपकरी और
माता पिता ऋण
हे राजन वो हे राजन है
देव ऋण भूत ऋण पितृ ऋण राज ऋण
देव ऋषि देव देवर्षि भूत आप्त माने क्या माता पिता भाई आत्मीय स्वजन इसके अंदर में आए और देवरीन माने देवताओं का ऋण देवताओं का ऋण क्या है
पानी बरसाते हैं कोई ताप देते हैं
शरीर की रक्षा के लिए वो सब हवा इत्यादि सबका देते हैं इसलिए हमारा कोई देखे और ना देखे देवताओं का और ऋषियों का ऋण ये क्या है अब हम लोग कभी ऋषि के अंदर मिले नारद है ऋषि और सब संसारी लोगों के लिए ये संहिताएं हैं मनु हारी जाग्रवल के क्या उसके द्वारा हमारा ये सब चलता है समाज और ये सब उनके ऋणी हैं और हम लोगों के लिए नारद हैं व्यास हैं सुखदेव गोस्वामी जी हैं और रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये हमारे सब ऋषि हैं इन लोगों का ऋषियों का ऋण हमारे गुरु परम ऋषि हैं ये सब भाव रखना देव ऋण ऋषि ऋण और
भूत ऋण
भूत ऋण भूत ऋण मैंने कहा
प्राणियों के
एक गाय दूध नहीं देगी ना फिर क्या होगा एक बैल खेत नहीं जोतेगा
खेती नहीं
हाँ आज तो ट्रैक्टर नया निकला है अब कुछ दिनों के बाद में जब ये सभ्यता एकदम सिविलाइज एकदम सब नष्ट हो जाएगी तो देखने में क्या होगा ट्रैक्टर की जो जानने वाले महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी थे ना धनुष बाण चलाते थे और आग लग जाती थी वर्षा हो जाती थी सांप की वर्षा होने लगती थी और क्या अब वो कहाँ विद्या है यदि मान लिया कि ऐसे ही ताक्षर बनाने वाला ये सब लोग एक महायुद्ध में एक एटम बम में सब नष्ट हो जाए फिर ट्रैक्टर कहाँ रहेगा फिर वही बैल वाले में फिर घोड़े पर चढ़ करके लोग लड़ेंगे ना मल्ल युद्ध करेंगे गदा से चलेंगे वो सब चीजें भी ये सब नष्ट और भ्रष्ट होती रहती है किंतु हम लोगों की ये भारतीय सभ्यता है ये सब समय ठीक चले अभी कभी तूफान आ गया और कभी कुछ तूफान क्या कर
रहा
था आपका एक मेरा जन्म हुआ और छोटी मेरी बहन छोटी सी अभी वो खुद भी नहीं चलना चाहती वो भी स्नेह करके गोदी में लेने की चेष्टा भले ही लेकर के गोदी में वो दोनों गिर जाए कोई बात नहीं फिर रोने भी लग जाएगी किंतु गोदी में लेकर के स्नेह करना इसी तरह से घर के जितने लोग हैं ना कभी उसके गोदी में कभी उसके गोदी में कभी उसकी गोदी में कभी उसकी गोदी में कोई कोई लाड़ प्यार कर रहा है कोई कुछ दूसरा कर रहा है इस तरह से पिता माता भाई बंधु जितने हैं सगे संबंधी सभी का हिस्सा है हमारे समय और दूसरे हैं राजा लोग राजा न रहे अभी तो मालूम नहीं पड़ता है यदि अच्छी तरह से शासन हो तो एक दिन में महिलाओं का चलना भी रास्ते में बंद हो जाएगा और अच्छे लोगों को साधु संतों को चलना बंद हो जाएगा कोई निकल नहीं सकते अच्छे आदमी दुष्ट लोगों की भरमार हो जाए जैसे कि वो पेन राजा के समय में हुआ या अभी भी कभी कभी हो रहा है कंस के समय में हुआ सब सज्जन लोग घर छोड़ करके भाग गए इधर उधर कोई सज्जन रह नहीं सकता दुष्ट लोग और वो लोग भी लड़ेंगे शराब खाएंगे और ऐसे करेंगे एकदम इसलिए राजा का भी उसमें इस तरह से हमारे ऋण हैं देव का ऋण कैसे चुकेगा
यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा उनका। और ऋषियों कार्य भी कैसे चले, दूसरे लोगों को हम वही शिक्षा जो उनसे पाए वही सब शिक्षा देंगे, और जो नहीं शिक्षा देगा वो कार्य नहीं रह जाएगा। हमारी परंपरा में ऐसी बात नहीं है, निरपेक्ष सीखो और दूसरों को भी। प्रहलाद महाराज भी इसी परंपरा में आए, हम सीख लेंगे और किसी को देंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जितना दोगे उतना ही ये बढ़ेगा, इसलिए इस ज्ञान को स्वयं उसमें प्रतिष्ठित होकर के दूसरों को भी देना उचित है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, जारे देखो तारे को है कृष्ण उपदेश हमारा अज्ञात गुरु भैया तारोई, गुरु बन करके जिसको देखो तुम कहना जे हरे कृष्ण 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 उसको देखो, और उसको कहना ना जैसे वो भी दूसरे करेगा, जैसे हम लोग कहते हैं अभी हमने जो बताया जो हरे कृष्ण करना, सब दूसरों लोगों को आप सभी लोग कहेंगे। आप प्रतिदिन अच्छे अच्छे आदमियों को सज्जनों को यहाँ पर लाएंगे जो कि इन सबको सुने समझे और करें, नहीं तो दुष्ट लोग अपने संस्थाएं बनाएंगे और धीरे धीरे ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए गुरु कार्य ऐसे होता है। और भूत, भूत माने प्राणी, गाय और सब उपकारी जो चीजें हैं